सज्जनों, आप सबको नमस्ते। ईशावास्य उपनिषद की चौथा मंत्र की चर्चा कर रहे थे। एक बार मेरे साथ मिलके बोलिए इसको। अनेजदेकम मनसो जवीयो, जदेकम मनसो जवीयो, नैनद्देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत्, आप्नुवन् पूर्वमर्षत्, तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्, तस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति। वो जो आत्मा है, जो अनेजत है, वो मूव नहीं करता, अकेला है। मनसो जबी, वो मन से भी ज्यादा फास्टर है, तेज चलता है। इसे कोई भी देव, इंद्रियां कभी भी नहीं पाते, क्योंकि इंद्रियों से पहले पूर्व मर्षत, ये पहले होता है। तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत, ये तिष्ठत, ये खड़ा रहता है, चलता नहीं है, अनमूविंग है। पर जितने भी दौड़ते रहते हैं उनसे हमेशा आगे ये मिलता है। तस्मिन अपो मातरिश्वा दधाति, और उस आत्मज्ञ तत्व में ही सारा संसार समाया हुआ होता है। पिछले बार हमने चर्चा की ये अनेजत क्या है। पूरा संसार जो है, जहां भी मूवमेंट है, वो मूवमेंट वहीं होता है जहां कोई अनमूव करने वाला चीज होता है। कोई स्टील जब तक नहीं होता, कोई स्टेशनरी चीज नहीं होता, उसके बेस पर कोई भी चीज मूव नहीं कर सकता। वो आपके गाड़ी के व्हील के एक्सल हो, या ये संसार हो, ये बबंडर जो आते हैं, या पानी में जो भंवर आते हैं, कुछ भी हो, व्हील पुल्स होते हैं, ये सिंपल चीजें हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। किसी चीज को मूव करने के लिए उसके अंदर कोई स्टेशनरी चीज होना जरूरी है। इसी तरह हमारे जीवन में भी हर मोमेंट चेंजेस होते हैं, शरीर बदलता है। बचपन से आप जवानी में आए, जवानी में मैच्योर हुए, फिर बुढ़ापा में जाएंगे। और ऐसा नहीं कि आप अचानक 25 साल हो गए तो यंग हो गए, 40 साल 50 साल के हो गए तो मैच्योर हो गए, ऐसा नहीं है। एवरी मोमेंट बॉडी में चेंजेस होते हैं। वो दिखता है 20-25 साल में, 50 साल में, 80 साल में, पर वो तो एवरी मोमेंट चेंज होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉडी में चेंजेस होते हैं, माइंड भी एवरी मोमेंट चेंज होता है। ये चेंजेस होते रहते हैं, कुछ मूव करता है, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसा है जो अनचेंजेबल है, स्टील है, स्टेशनरी है, जो खुद मूव नहीं करता। जैसे ही वो चीज मूव करने लग जाए या हट जाए, तो फिर बॉडी में फिर कोई चेंजेस नहीं होता है, ना फिर जवानी आती है, ना बुढ़ापा आती है। बॉडी डिके करने लगता है, सड़ने लगता है, गलने लगता है, फिर उसको जलाना पड़ता है। इसी तरह संसार इतना बड़ा विशाल यूनिवर्स से मूव करता है, एवरीथिंग इज मूविंग। ऐसा नहीं कि स्टार्स मूव करते हैं या प्लैनेट्स ही मूव करते हैं। उस स्टार और उस प्लैनेट्स के अंदर रहने वाले वो छोटी से छोटी चीज, इलेक्ट्रॉन से लेकर के बड़े से बड़े स्पेस तक, माउंटेन तक, सबके अंदर मूवमेंट होता है। क्यों मूवमेंट होता है? क्योंकि उसके अंदर कोई अनमूव करने वाला चीज रहता है। और वो जो आत्मा या परमात्मा है, वो हमेशा स्थिर होते हैं, अक्रिय होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। पर उनके होने से सारा ब्रह्मांड चलता है। आत्मा के होने से आपकी पूरी की पूरी लाइफ फंक्शन करता है। ये अनेजत है, पर मन से भी तेज गति से भागने वाला होता है। वो इसीलिए कि मन उसको जहां जहां ढूंढता है, वो उसको वहां नहीं मिलता है, उसे दूर मिलता है। जैसे आप गर्मी के मौसम में, जब मई जून में होता है, इवन रोड पर भी आप देखते हैं, अगर रोड बिल्कुल खाली हो, बहुत कम गाड़ियां हो और आप जाते हो, आपको दूर से दिखता है जैसे रोड पर पानी भरा हुआ है। और जितना आप क्लोज जाते हैं, वो पानी आपको दूर दिखता है। रेगिस्तान में ये बहुत होता है, डेजर्ट्स में। इसको मृग मरीचिका कहते हैं। मृग हिरण जो होता है, या कोई जानवर जब रेगिस्तान में प्यासा होता है, तो पानी ढूंढने के लिए जाता है। धूप के कारण दूर से उसको पानी का डिसेप्शन दिखता है और वो उस पानी को ढूंढते ढूंढते भागता है, जितना आगे जाए पानी उसे आगे मिले, और इस तरह दौड़ते दौड़ते हिरण या जानवरों की जान निकल जाती है, इसलिए उसको मृग मरीचिका कहते हैं। हमारी भी वही हालत होती है, हम ईश्वर को या आत्मा को ढूंढते हुए भागते हैं, दुनिया में भागते हैं, मंदिरों में भागते हैं, आश्रमों में, पूजा में, पाठ में, कितने तरह के चीजों में भागते रहते हैं, और कहीं भी भागें ढूंढने के लिए आप यूएसए से भारत पहुंच जाओ, भारत से ब्रिटेन पहुंच जाओ, ब्रिटेन से जापान पहुंच जाओ, कहीं भी पहुंचो वो वहां ऑलरेडी मिल है ही, पर आपको नहीं मिलता, आपके हाथ से खिसक जाता है, आप कितने कुछ भी करते हो। क्यों? क्योंकि ये भी हमने चर्चा की, क्योंकि जो स्थिर चीज हैं, जो स्टेशनरी होते हैं, उनको अगर एंजॉय करना है, ठीक से जानना है, तो आपको भी स्टेशनरी बनना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। पेड़ में लगे हुए फूल को अच्छी तरह निहारना है, देखना है, तो आपको भी खुद खड़ा हो करके उसको एंजॉय कर सकते हो। अगर आप चलते हुए देखते हो तो आप हल्के फुल्के देखेंगे, बाइक में जाते हुए देखेंगे और कम आपकी ज्ञान होगा, आप अगर कार से जाते हुए देखेंगे, मूविंग कार से, तो वो फूल का ज्ञान और कम होगा। अगर हेलीकॉप्टर से जाएंगे, जेट से जाएंगे, स्पेस शटल से जाएंगे, तो कम होता जाएगा, दिखेगा पर कम होता जाएगा, और अगर माइंड की स्पीड में जाएंगे तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। तो आपकी लाइफ में भी होता है, कभी कभी आपकी आंखें कहीं होती है पर आप उसको देख नहीं रही होते हैं, क्योंकि आपके माइंड और कहीं होता है। कुछ चीजें आप समझने की कोशिश करते हैं, समझ अंदर जा ही नहीं रहा है, क्योंकि माइंड वहां नहीं होता है। तो मन से वो ज्यादा तेज गति में होता है, इसीलिए, क्योंकि मन उसको कभी नहीं पा पाता, इसीलिए पतंजलि और हमारे पूरे वैदिक विचारधारा में ये होता है कि अगर आपको कभी ईश्वर को जानने की इच्छा हो, नहीं हो तो खुद को जानने की इच्छा हो, तो एक ही रास्ता है कि आप अपनी मेंटल एक्टिविटीज को बंद करो, फिजिकल नहीं, माइंड को बंद करो, माइंड में कोई फंक्शन ना हो, चित्त वृत्ति का निरोध हो जाए। इसीलिए आप जब भी पूजा में, उपासना में बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, कोई बोले नहीं तो भी आंखें बंद हो जाता है, आंखें खुले रहता है तो दुनिया में डिस्ट्रैक्शन होता है, अंदर जा ही नहीं सकते। तो जब मन आपका शांत हो जाए तब आप खुद को रियलाइज करने के लिए आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आता है, और उसको शांत करने की जो पूरी प्रक्रिया है वो सब स्पिरिचुअलिटी आप कहते हैं। आप मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, पूजा करते हैं, अगर आप जेन्युइनली करते हैं, काम कल चलाने के लिए, नाम रखने के लिए करते हैं, फैमिली ट्रेडिशन है, उस किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, सोसाइटी का प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, ज्यादातर लोग जैसा भी करते हैं, तो उसका तो कोई मतलब नहीं होता है, वो तो सिर्फ एग्जिबिटरी होता है। अगर आप रियली कुछ करना चाहते हैं तो आप मन से शांत हो जाते हैं, जैसे जैसे मन शांत होने लगता है तो फिर हम अंदर को रियलाइज करने लगते हैं। अगला उसी मंत्र का अगला वाक्य कहता है कि नैनद देवा आपनुवन पूर्व मर्षत। देव मतलब इंद्रियां, जिसकी चर्चा हमने पिछली बार डिटेल में किया था। तो इंद्रियां इसको नहीं पा पाती हैं, क्योंकि इंद्रियां जहां होती हैं उससे बैकग्राउंड में ये होता है, इंद्रियां बाद में आती हैं, पहले आत्मा आती है, फिर शरीर आता है, फिर मन आता है, मन आता है, फिर शरीर आता है, फिर इंद्रियां आती हैं। इंद्रियों को ये कभी नहीं मिलेगा, और ईश्वर ने इंद्रियों को बनाया ही ऐसा ही है कि वो हमेशा एक्सटर्नल चीजों से अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। आंखें बाहर की दुनिया को देख सकता है, आंखें के पीछे क्या चल रहा है नहीं देख सकता ना। कान दुनिया की आवाजें सुन सकता है, अंदर आपकी बहुत सारी आवाजें आती हैं, मैं पेट खराब की आवाज की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब अंदर की आवाज का मतलब होता है कि अंदर आपकी जो कमन, आपकी जो इनर सेंस है उसकी आवाज आती है, जो आपको कभी कभी अवेयरनेस में लाता है, हमें कान से उसको सुनने की जरूरत नहीं होता है। जब हम शांत होते हैं तो हम अंदर का विचार हमें पता लगता है कि कोई भी चीज आप डिसीजन लेना चाहते हैं, बड़े डिलेमा में हैं, समझ में नहीं आता है क्या करें ना करें, आपके अंदर से आपको एक आंसर आता है, ये सर नो या कुछ भी, कोई भी आवाज आता है, वो आप कान से नहीं सुन सकते। वो सुन सकते हैं जब बाहरी दुनिया की आवाज से आप शांत हो जाएं थोड़ी देर के लिए। जब आप बहुत बेचैन होते हैं, आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता किसी प्रॉब्लम का, वो कोई प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो, लाइफ का प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो, तो आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। लोगों को बोलते हैं बस मुझे चुप हो जाने दो, आप शांत हो जाते हैं। तो जब आप शांत होते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर आपको अपने अंदर की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसको आप कहते हैं दिल की आवाज, दिमाग की नहीं। वो अंदर की आवाज जो आपको बोलता है, कुछ बोलना चाहता है, वो कान से नहीं सुन सकते, जब शांत होते हैं तभी सुनाई देता है। तो इंद्रियों का काम है, नेचर ही है कि वो बाहर से रिलेट कर सकते हैं, अंदर से रिलेट नहीं कर सकते। ईश्वर ने बनाए ही उनको कि वो बाहर से रिलेट करें। आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए जो ईश्वर ने सिस्टम दिया वो आपकी सेंसेस है। उसको आप भगवान पाने के लिए, आप इसको खुद को जानने के लिए लगाएंगे तो बेकार है, वो इंस्ट्रूमेंट काम नहीं आएगा। इसलिए इवन जो सो कॉल्ड रिलीजियस हैं या नहीं भी हैं, हमेशा यही सवाल पूछते रहते हैं, भगवान है तो क्यों नहीं दिखाई देता, अगर होता तो दिखाई देना चाहिए, मिलता क्यों नहीं है, सब चीजें जो हो वो मिलता है, ये क्यों नहीं मिलता। मिलेगा ही नहीं क्योंकि तुम गलत तरीके से ढूंढते हो। वो पंचतंत्र में कहानियां पढ़ते हैं, एक बगुला क्रोन जिसकी वो लंबा होता है, जिसकी चोंच, और एक कुत्ते में दोस्ती हुई, तो एक ने एक दूसरे को इनवाइट किया अपने घर में। तो पहले बगुले ने कुए को अपने घर में इनवाइट किया खाने के लिए, और खाने के लिए एक घड़ा रखा, और घड़े का मुंह छोटा होता है। कुत्ते को और बगुले को दोनों बैठ के खाने लगे जो भी उसके अंदर था। बगुला की चोंच तो लंबी है, उसने मुंह में डाल के सब खा गया, कुत्ता नहीं खा पा रहा था। उसने बोला ये मेरे साथ चीटिंग किया। उसने बोला चलो आप मेरे घर भी आना। बगुले को इनवाइट किया, उसने थाली में, बिल्कुल एक पतली सी थाली में, फैली हुई थाली में अपने पानी रख दिया या दूध जो भी। कुत्ते तो जीव से चटक चटक के खा पी गया, सारा खा गया, और चोंच में, बगुले के चोंच में आ ना रहे, उस वो थाली बार बार चुभ रहा है उसकी चोंच में। इसका अर्थ नहीं है कि वहां पानी नहीं था, दूध नहीं था, खाना नहीं था, अगर बगुला नहीं पी पाया या कुत्ता नहीं खा पी पाया घड़ा में। प्रॉब्लम है कि आप गलत इंस्ट्रूमेंट लेकर गलत चीजें ढूंढते हो। इंद्रियां तो केवल बाहरी दुनिया से कनेक्ट करने के लिए, जो स्थूल रूप में है, जो ग्रास फॉर्म में है, जो सुपरफिशियल है, उन्हीं चीजों को इंद्रियों से जान सकते हैं। तुम कहते हो अगर भगवान है तो दिखाओ, तो कैसे दिखेगा? तुम तो दुनिया में भी करोड़ों ऐसी चीजें हैं जिनको देख नहीं सकते हो आंखों में। तो क्योंकि हम गलत सोर्स से, गलत इंस्ट्रूमेंट यूज करके जानना चाहते हैं तो नहीं मिलता। दूसरी, तुम्हें कभी इंटरेस्ट रहा ही नहीं जानने के लिए, तुम सिर्फ अपनी पल्ला झाड़ने के लिए बोलते हो कि है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता, जाना क्यों नहीं जाता। तुम्हें कब फर्क पड़ा कि ईश्वर है कि नहीं है? तुम्हें फर्क पड़ता है कि पैसा कमाना है, घर बसाना है, बेबी बच्चे पालना है, बाजार जाना है, अच्छे कपड़े पहनना है, दुनिया घूमना है, अच्छा खाना है, अच्छा घर बनाना। कब तुमने इसके लिए प्रायोरिटी दी? जब तुम्हारे प्रायोरिटी में ये है ही नहीं तो तुम्हें कहां से मिलेगा? जिस आदमी को पैसा कमाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तुम उसके सामने करोड़ों की डॉलर दे दो कि ले भाई बैंक तुम्हें, हम 0% इंटरेस्ट पर तुम्हें लोन दे रहे हैं, इसमें कुछ अच्छा काम करो, वो एक साल के बाद आएगा, सब खर्च वर्च हो गया, किसी को दान दे दिया होगा, कुछ खर्च कर लिया होगा, वापस आएगा, क्योंकि उसको इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। क्योंकि हमें इन चीजों में जेन्युइनली इंटरेस्ट नहीं है, ज्यादातर लोगों को, इसीलिए कभी ना खुद मिलते हैं, ना कभी आत्मा मिलती है, ना परमात्मा मिलती है। और जिन चीजों से हम ढूंढते हैं या अपने आप को खुश करते हैं कि चलो मैंने भगवान देख लिया, या देखना है, वो गलत तरीके से मंदिरों में ढूंढते हैं, चर्चों में ढूंढते हैं, मस्जिदों में ढूंढते हैं, आश्रमों में ढूंढते हैं, मठों में ढूंढते हैं, वहां कहां मिलेगा। वहां जो कुछ आप देखते हो आंखों से दिखता है, और जहां तक तुम आंखों से देखोगे वो आत्मा हो ही नहीं सकता, जहां तक तुम कानों से सुनोगे वो आत्मा हो ही नहीं सकता। ऐसा आपने पहले पढ़ा है केन और प्रश्नोपनिषद में। तो फिर तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत, इसीलिए वो अपने आप में बड़ा स्टेशनरी है, शांत है, चुपचाप है, कोई एक्ट नहीं करता, कोई मूवमेंट नहीं करता, पर दौड़ने वालों से आगे मिलता है। आप दौड़े दौड़े कहीं भी पहुंचो ईश्वर को पाने के लिए, आपको किसी ने कहा कि हरिद्वार में भगवान मिलते हैं, आप भागे, आपको किसी ने बताया गंगोत्री में मिलता है, आप वहां भी दौड़े, आप दौड़ते रहते हैं पूरी जिंदगी, वो नहीं मिलता क्योंकि वो आपसे बहुत आगे होता है, क्योंकि आप गलत तरीके से ढूंढते हैं। जब आप शांत होते हैं, बिल्कुल आप भी उसी तरह होते हैं जिस तरह आत्मा है अपने मन और इंद्रियों को, तब फिर आप आराम से उसको एंजॉय कर सकते हैं। यही उसका भाव है, तस्मिन नापो मातरिश्वा दधाति, और उसमें उस परमात्मा में सारा संसार, सारे एटमॉस्फेयर उसी में समाया हुआ है। उसी से रिलेटेड ये दूसरा फिफ्थ मंत्र है, बोलिए मेरे साथ, तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदो सर्वस्यास्य बाह्यतः। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मंत्र है। वो कहता है कि तदेजति, वो मूव करता है, वो मतलब जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, आत्मा या परमात्मा। फिर अगले सेंटेंस में कहता, अगले सेंटेंस में ही, सेंटेंस के दूसरी पार्ट में, कि तद ना एजति, वो मूव नहीं करता, और कहता है कि तद दूर है, वो बहुत दूर है, सेंटेंस पूरा ही नहीं होता है, वो कहता है कि वो क्लोज है। अगले सेंटेंस में कहता है कि वो सबके अंदर है, और सेंटेंस पूरा ही नहीं होता है, वो कहता है सबसे बाहर है। बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हैं, और लॉजिकली जनरली ये बड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल है, क्योंकि कोई लॉजिक ही नहीं है। जो दूर होगा वो पास कैसे होगा, जो चल आप कहते वो मूव नहीं करता, फिर कहते हो मूव करता है, आप कहते वो पास है, फिर कहते हो दूर है, दिमाग नहीं मानता इस तरह की चीजें। तो या तो पागल लोग बोलते हैं, मतलब जिनका मेंटली डिसऑर्डर हो चुका है, या कुछ बहुत ज्यादा रियलाइज्ड पर्सन होते हैं जिसको हमें समझ में नहीं आता है। हजारों सालों तक हमारी यही लॉजिक था कि जो मूव करता है आप इसको स्टेशनरी नहीं बोल सकते हो, वो स्टेशनरी नहीं हो सकता, और जो स्टेशनरी है मूव नहीं करता, आप नहीं कह सकते हो कि मूव करता है। पर फिर लोगों के ज्ञान और विज्ञान में वृद्धि हुई, और पदार्थ विज्ञान में जिसे आप भौतिक विज्ञान या फिजिक्स कहते हैं, थ्योरी आई, उसको कहते हैं क्वांटम थ्योरी। जब इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करने के लिए प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि वो वेव भी है, वेव का मतलब है कि उस वो मूव भी करता है, छोटा है ना, और वो एटॉम भी है, क्योंकि कण है, कण जो है वो द्रव्य का सटल फॉर्म है, और जब आप उसको कण कहते हैं वो स्टेशनरी है, जब आप इसको वेव कहते हैं तो मूविंग है। पर रूल तो यही था नेचर का कि भाई जो मूव करता है वो स्टेशनरी नहीं है, जो स्टेशनरी है वो मूव नहीं कर सकता। पर देखा गया इलेक्ट्रॉन में वेव भी है और एटम भी है, तो नई थ्योरी बनी क्वांटम थ्योरी कि दोनों है। तो दुनिया में ऐसी बहुत चीजें हैं जो हमारे सुपरफिशियल माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता, लॉजिकल माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता, पर धीरे धीरे जब हम उस ट्रूथ को, फैक्ट को जानने लगते हैं तो फिर एक्सेप्ट करना पड़ता है। नेचर में ऐसी बहुत चीजें हैं जो हमारे बुद्धि के हाई ऊपर लेवल की चीजों में समझ में नहीं आता। जब तक कोई ऐसा कोई रियलिटी को ठीक से जानने वाला व्यक्ति, तत्वज्ञानी जिसको हम कहते हैं, नोअर ऑफ द ट्रूथ और फैक्ट, ऐसा कोई साइंटिस्ट आता है, फिलोसफर आता है जो आपको एक्सप्लेन कर देता है, तब आपको समझ में आता है, मजबूरन मानना पड़ता है। इसलिए देवियों सज्जनों, जो रियलिटी या ट्रूथ है वो लॉजिक की डिमांड नहीं करता। अगर लॉजिक लगता है तो लगता है, नहीं लगता है तो नहीं लगता। हमें उसके हिसाब से लॉजिक बनानी पड़ती है। पहले हम मानते थे गर्मी और सर्दी दो अपोजिट चीजें हैं। बाद में पता चला, हमने धीरे धीरे ज्ञान विज्ञान बढ़ा, हमारे साइंटिस्टों ने कहा नहीं, ये गर्मी और सर्दी दो अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक ही चीज की अलग अलग डिग्री की फर्क है। अगर 32 डिग्री हो गया तो ये ठंडा आप कहते हो, फ्रीजिंग हो गया। अगर वही 100 डिग्री हो गया आप गर्म कहते हो। डिग्री की नंबर कम फर्क पड़ जाता है, बाकी है तो सेम चीज है। ये कोई अपोजिट नहीं है, एक ही चीज के अलग अलग साइड्स हैं। अंधेरा और प्रकाश दोनों एक दूसरे के अपोजिट हम मानते चले, वैसे डे टू डे व्यवहार में हम मानते हैं, पर अगर आप साइंटिफिकली उसको एक्सप्लेन करें, लॉजिकली, वो नहीं है, सिर्फ डिग्री की फर्क है। आप लाइट को डीम कर दीजिए तो अंधेरा है, लाइट को थोड़ा उजाला ज्यादा वोल्टेज दे दीजिए तो वो प्रकाश है। तो लाइफ में सुख और दुख भी यही है। आप सुख या दुख को कितने लेवल पर सह सकते हो, जिस लेवल तक आप एंजॉय करते हो कि तो ये अच्छा है, और जब उसको आप एंजॉय नहीं करते हो तो खराब है। कल तक आपके लिए मीठा अच्छा था, आपको एंजॉय करते थे क्योंकि आप हेल्दी थे, आज आपको फीवर है, बुखार है, कोल्ड है, आपके जीभ में कोई स्वाद नहीं बचा, स्वाद नहीं आप ले पा रहे हैं, तो आप मीठा खाते हैं या कुछ खाते हैं आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, कभी कभी उल्टी आती है। तो ये जो विरोध, कॉन्ट्रडिक्टरी दिखने वाले चीजें होते हैं, दिखने वाले, इसको विरोधाभासी कहते हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है पर दिखता है कि कॉन्ट्रडिक्टरी। आत्मा और परमात्मा भी, क्योंकि बहुत गहरी चीज है, बहुत गहरे में रहते हैं, हमारे ही अंदर होते हैं, बहुत डेप्थ में होते हैं, उनको हम हर कोई नहीं जानता और बड़े शटल फॉर्म है, इसीलिए वो उनके लिए जिस तरह के एडजेक्टिव्स यूज किए जाते हैं वो कभी कभी कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है। वो मूव करता है, वो मूव नहीं भी करता है, वो मूव कर नहीं करता, क्योंकि अगर वो मूव करने लगे तो एक्सेल अगर मूव करने लगे तो आपके व्हील्स में एक्सीडेंट होने लगेगा, चलेगा ही नहीं ठीक से, वो स्थिर है। पर स्थिर है तो फिर जब आपकी गाड़ी की व्हील 50,000 माइल चलता है तो एक्सेल भी तो 50,000 माइल चला हुआ होता है विदाउट मूविंग। ये आत्मा में कोई मूवमेंट नहीं होता, पर करोड़ों करोड़ों जन्मों से, कितने लाखों करोड़ों शरीरों के चक्र से वो गति करता रहता है, गति अगेन मूवमेंट करता रहता है। हजारों लाखों एक्सपीरियंस लेकर चलता रहता है। वो नहीं चलता क्योंकि वो निष्क्रिय है, चलता है क्योंकि उसके हजारों शरीरों के द्वारा उसके मूवमेंट चलता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी गाड़ी के व्हील का जो एक्सेल है वो बिल्कुल मूव नहीं करता, हल्की सी भी उसमें ढीलापन आ जाए, मूव करने लगे तो आपके व्हील में एक्सीडेंट होने की चांस होता है, पर वो बिना मूव किए भी करोड़ों माइल जा सकता है, क्योंकि वो उस व्हील के साथ कनेक्टेड है जो मूव करता है। ये आत्मा गति नहीं करता, पर ये शरीर से कनेक्टेड होने से, मन के अंदर रहने के कारण ये मन मूव करता रहता है, और उसके अंदर आत्मा भी हजारों जन्मों को भोगता रहता है। तद्दूरे तद्वंत के, वो बहुत दूर भी है और बहुत नजदीक भी है। बहुत दूर है क्योंकि आज तक हमें मिला नहीं, करोड़ों लोग करोड़ों जन्मों से उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, नहीं मिलता। हम सब, हमारे में से बहुत सारे होंगे जो कितने सालों से भक्ति करते हैं, तपस्या करते हैं, उसको जानने मानने के लिए, किसको, खुद को नहीं पा पाते, नहीं जान पाते, इसीलिए बड़ा दूर है। क्योंकि इतनी जर्निंग करने के बावजूद भी वो नहीं मिलता। अगर फिजिकली जर्निंग कर रहे होते तो करोड़ों माइल जर्निंग कर लिए होते, जितना हम उसके ढूंढने में टाइम लगाते हैं। पर वो नांतिक है, क्लोज भी है, क्योंकि सबसे अगर कोई क्लोजेस्ट नियरेस्ट चीज है वो तो वही है, क्योंकि तुम ही, वो मेरा अपना ओन असेंस है। मेरे अंदर जो सबसे क्लोजेस्ट चीज कोई है वो तो मैं ही हूं, मेरी आत्मा है। वो मेरे से दूर कैसे होगा, वो तो सबसे नियरेस्ट चीज वही है, पर क्योंकि मिलता नहीं है इसीलिए सबसे दूर लगता है। इसको वैसे ही समझिए जो लास्ट टाइम हमने पेड़ की एग्जाम्पल दिया था, याद होगा। पेड़ के पत्ते, ब्रांचेस और ट्रंक देख करके हमें लगता है यही पेड़ का सब कुछ है। पत्ते सूखने लगते हैं, हमें लगता है कि पेड़ मरेंगे, पर पत्तों से पेड़ नहीं चलता। पेड़ तो अपने रूट से चलता है, रूट उनकी सोर्स ऑफ लाइफ है। पत्तों का भी सोर्स ऑफ लाइफ वही है, पेड़ों का भी, ट्रंक का भी वही है, ब्रांचेस का भी वही है, पर वो छुपा हुआ होता है मिट्टी के अंदर, दिखता नहीं है। पत्ते दिखते हैं, ब्रांचेस दिखते हैं, ट्रंक दिखता है। और जिस आदमी को ये क्यूरियोसिटी हुई, जानने की इच्छा हुई, अंदर जाने की कोशिश किया, मिट्टी खोदा, पहुंचा कहां पेड़ जाता है, बिल्कुल जड़ को पकड़ा, जिस दिन वो समझ गया कि ये जड़ या रूट जो है ये इस ट्री का सोर्स ऑफ लाइफ है, उस दिन साइमल्टेनियसली उसको दोनों नॉलेज होते हैं कि ये रूट ही केवल नहीं है, ये रूट का भी कोई सोर्स है जहां से अपना न्यूट्रिशन लाता है, खाना लाता है, वह अर्थ है, धरती है। इसी तरह जैसे ही हम अंदर यात्रा करने लगेंगे, ये फिजिकल अपीयरेंस को अंदर, ये मेंटल स्टेट से अंदर, ये इंटेलेक्चुअल स्टेट से अंदर, जब बहुत अंदर जाने लगेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे पत्तों के नीचे ब्रांचेस, ब्रांचेस के नीचे ट्रंक, ट्रंक के नीचे रूट, रूट से फिर डीपली जाते रहेंगे, तो पता चला मेरा जो असली अस्तित्व है वो आत्मा है। और जिस दिन आत्मा का अस्तित्व पता चले, साइमल्टेनियसली आपको ये भी पता चलेगा इसका भी सोर्स ऑफ लाइफ और कहीं से आता है, वो है परमात्मा। पर प्रॉब्लम है कि पत्तों को हमेशा ये ज्ञान होता है कि सूरज उसका सबसे बड़ा फ्रेंड है, क्योंकि वही हमेशा पास मिलता है। वो अपने रूट्स, जिसके कारण उसके पत्ते हरे हैं, कलरफुल हैं, वो कभी ऐसा सोचता भी नहीं कि वो रूट्स का कोई कंट्रीब्यूशन है उसके लाइफ में, उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि सुबह होते ही रोज वो 12 घंटे तक सूरज को देखता है। पत्ते हमेशा सूरज को अपना नियरेस्ट मानते हैं, पर मजे की बात है सूरज उससे बहुत दूर है, ट्रिलियन ट्रिलियन माइल्स दूर है, पर सूरज उसको नजदीक दिखता है क्योंकि उसको रोज वो फील करता है, वो दिखता है, और रूट उसके साथ जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, तब भी वो मान नहीं पाता है कि रूट से मेरा कोई रिलेशनशिप है। सवाल पूछता है कि रूट होता क्या है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पूछते हैं ये आत्मा क्या होता है, ये नहीं होता, होता है नहीं होता है, प्रूफ क्या है, प्रूफ मांगते हैं हम प्रूफ नहीं मांगते हमारे फ्रेंड्स हैं कि नहीं है, फ्रेंड्स धोखा दे सकते हैं तब भी मानते हैं ये फ्रेंड है, हम ये मानते हैं ये एनिमी है, हो सकता है वो आपके असली में फ्रेंड हो पर हम उसको मानते एनिमी है, हम दुनिया में हर चीज की एग्जिस्टेंस मान लेते हैं जो हमसे बहुत दूर है, पर हम उसके एग्जिस्टेंस तक मानने को तैयार नहीं होते हैं जो हमारे सबसे क्लोज है। बिल्कुल वैसे जैसे पत्ता सूरज को नियरेस्ट मानता है और रूट को बहुत दूर का मानता है, क्योंकि पत्तों को कभी नहीं पता लगता, कभी नहीं। पूरी लाइफ में हजारों लाइफ हो जाए, कभी भी किसी पत्ते को पता नहीं चलेगा रूट से उसका क्या कनेक्शन है, रूट होता भी नहीं होता है, वो कहां होता है और उसका क्या कनेक्शन है, क्योंकि वो छुपा हुआ होता है। हम भी यही शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, अपने माइंड से आइडेंटिफाई करते हैं, अपने आप को अपने इंटेलेक्ट से आइडेंटिफाई करते हैं, अपने मैटेरियल चीजों से आइडेंटिफाई करते हैं, अपने रिलेटिव से आइडेंटिफाई करते हैं, पर जहां मैं खुद हूं, जो मेरी अपनी असली आइडेंटिटी है, उससे तो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाता हूं। आइडेंटिटी तो जानना दूर की बात है। इसीलिए कहा जैसे पेड़ के पत्ते दूर सूरज होने पर भी उसको लगता है कि ये मेरा क्लोज है, और क्योंकि रोज उसके साथ उसका कनेक्शन होता है, रूट उससे क्योंकि उसका कोई सेंसुअल रिलेशनशिप नहीं है, इंद्रियों से जान नहीं सकता, इसलिए उसको लगता है कि ये मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। इसी तरह आत्मा बहुत दूर है क्योंकि कभी नहीं मिलता, हम तो यह एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि है कि नहीं है, ढूंढेंगे बाद में, ढूंढने पर भी कब मिलेगा। पर दुनिया से हम बहुत क्लोज फील करते हैं, अल्दो दुनिया से हमारा बहुत ज्यादा नाता नहीं होता है, सिर्फ 40-50 साल की 60-70-80-100 साल का रिश्ता है, और उसको अचीव करने के लिए भी बहुत कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। जो भी हमारे पास है, आपके अपना रिपुटेशन, नाम, पैसा, घर, उसके लिए आपने बहुत मेहनत करके कमाया है, आसानी से नहीं आता ये सब चीजें। जहां आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप खुद हो, उसको हम कभी अपने साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ये स्वाभाविक है। इसीलिए कहा आत्मा बहुत दूर भी है और बहुत क्लोज भी है। जान जाओ तो बहुत क्लोज है, और ना जान पाओ तो दुनिया में सबसे ज्यादा दूरी पर वही है। आत्मा के बिना हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसीलिए वो क्लोज है, क्योंकि जिंदगी भर ढूंढते रहते हैं, नहीं मिलता, इसीलिए वो दूर है। अगला, तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता, वो सबके अंदर है, सबके बाहर भी है। ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी है भाई, जो बाहर होगा वो अंदर कैसे होगा? मैं अगर घर के बाहर हूं तो बाहर हूं, अंदर नहीं हूं, कोई मैजिशियन थोड़े ही हूं। और अगर मैं अंदर हूं तो मैं बाहर कैसे होऊंगा? अगर किसी को दोनों जगह दिख रहा है तो वो कोई इल्यूशन है, डिसेप्शन है, जैसे मैजिशियंस करते हैं, जैसे आजकल बहुत सारे रिलीजियस लीडर्स भी करते हैं, इस तरह के मैजिक दिखाते हैं और अपने आप को डिवाइन पावर अपना दिखाने की कोशिश करते हैं। पर लॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप अंदर भी हो बाहर भी हो। पर आत्मा अंदर भी है बाहर भी है, बिल्कुल वैसे जैसे आकाश स्पेस बाहर भी है, सारा दुनिया स्पेस में है। आप एक घर बनाते हैं, उस स्पेस के अंदर ही घर बनाते हैं, आकाश मतलब स्पेस खाली जगह, उसके अंदर एक घर बनाते हैं, वो घर के दीवार उड़ते ही आकाश में को आपने दो टुकड़ा कर दिया, एक एक्सटर्नल जो बाहर है आपके घर का स्पेस है और एक घर के अंदर का स्पेस है। अब ये कहते हो ये मेरे घर का अंदर, ये देखिए ये सत्संग हॉल का इतना स्पेस है, वो सत्संग हॉल का स्पेस और सत्संग हॉल के बाहर के स्पेस में क्या अंतर है? कोई अंतर है? नहीं है, सिर्फ हमने एक आर्टिफिशियल वॉल उठाया और हमने कहा ये एक दूसरा स्पेस है और वो बाहरी दुनिया दूसरी स्पेस है। पर प्रैक्टिकली तो ठीक है, हमारी जरूरत के हिसाब से ने हमने वॉल उठा के दो टुकड़े कर दिए, पर क्या रियलिटी में ये स्पेस और वो स्पेस अलग अलग है? नहीं, दीवार टूट जाएगा, ये बाहर और अंदर एक है। तो जो स्पेस अंदर है वही बाहर है देवियों सज्जनों। उसी स्पेस को हमने वर्ल्ड कर दिया तो ये इसका अलग नाम दे दिया, उसका अलग नाम दे दिया, पर उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। हम ब्रीद लेते हैं, सांस लेते हैं, जो आप इनहेल करते हैं तो वही सांस हवा अंदर जाता है, अंदर जाते ही उसकी फंक्शंस अलग हो जाते हैं, उसकी फॉर्मेट अलग हो जाते हैं, वो प्राण अपान व्यान समान उदान के रूप में यूज करने लगते हैं, वो हमारे लाइफ सिस्टम बन जाता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को चलाने लग जाता है समान वायु, पूरे बॉडी में नर्व सिस्टम में ब्लड ऑक्सीजन को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है व्यान वायु, हमारे अंदर की गंदगियों को बाहर निकालने में हेल्प करता है अपान वायु। पर वो क्या वो जो प्राण अपान व्यान समान जिसके नाम देते हैं, जो अंदर है और जो बाहर का एटमॉस्फेरिक एयर है, उनमें कोई अंतर है? नहीं है। सांस जो अंदर गया और सांस जो बाहर आया, ये दोनों उस परम वायु के, ये जो जो बाहर के इतने बड़े वायुमंडल का ही हिस्सा है। जब अंदर होता है तो उसका हम अलग नाम दे देते हैं, और जब बाहर होता है तो हम उसका अलग नाम दे देते हैं, पर होता तो वही एक ही है। फर्क है कि कोई इसको एक्सपीरियंस कर पाता है, कोई बड़ों से समझदार लोगों से जाना समझा और रियलाइज किया, कोई पूरी जिंदगी ना कोई पढ़ा लिखा ना कहीं से कुछ पढ़ा लिखा समझा, कुछ नहीं किया, इसीलिए उसको कभी एक्सपीरियंस नहीं होता, समझ नहीं आता है कि बाहर का वायु और अंदर का वायु एक ही है। सिर्फ फंक्शन अलग होने से नाम अलग हो सकता है, पर चीजें तो एक ही होती है। इसी तरह वो परमात्मा या आत्मा हमारे अंदर भी है, और वही परमात्मा उसके अंदर भी है, उसके अंदर भी है, सबके अंदर है, हमारे शत्रुओं के अंदर भी वही है, मित्रों के अंदर भी वही है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों के अंदर भी वही है जो मेरे अंदर है, सबके अंदर है वही है। और जैसी मेरी आत्मा है दूसरों की आत्मा भी बिल्कुल वैसा। अगर आत्मा आने पर बॉडी में सेंसेस आते हैं तो सब में आता है। अब आत्मा आने के बाद अब मैं इस तरह का लाइफ हो चुका है, अगर कोई मुझे पोक करता है तो मुझे चुभता है, इसका मतलब मैं भी किसी को पोक करूंगा तो उसको चुभेगा, कोई गाली गुलज करता है तो बुरा लगता है तो मैं भी किसी को गाली गुलज करूं तो उसको भी बुरा लगेगा। मंत्र यही कहता है। तो जिस दिन आप अपने अंदर को समझ जाओगे ना, रियलाइज कर लेंगे हम अपने आप को, तो फिर उस दिन हम सबके अंदर वही चीजों को देख पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे। हमें सब में हर चीज अलग अलग दिखता है, इसीलिए है क्योंकि हम खुद को ही नहीं जानते। इस उपनिषद के अगले मंत्र आएगा, दो तीन आठवें नौवें मंत्र में हम चर्चा करेंगे कि जो खुद में सबको देखता है और सब में खुद को देखता है, वही रियलिटी में देखता है। मतलब जो मेरे अंदर है वही सबके अंदर है, और जो सबके अंदर है वो मेरे अंदर है। पर ये तब होता है जब मैं खुद की अंदर की यात्रा करूं, खुद को एक्सपीरियंस करूं कि मैं क्या हूं। जिस दिन मुझे अपनी पहचान मिल जाएगा, मुझे साइमल्टेनियसली दोनों पहचान मिलेगा, एक तो मैं क्या हूं, मेरी रियलिटी में मेरी क्या फॉर्म है, और मेरे सोर्स ऑफ वो जो पावर है वो कहां से आता है, वो परमात्मा। और जिस दिन मुझे अपने अंदर का ज्ञान हो जाए, मुझे फिर वो कण कण में जर्रे जर्रे में हर जगह मुझे वही चीजें फिर समझ में आने लग जाएगा। पेड़ों में भी, पौधों में भी, पशुओं में भी, पक्षियों में भी, सब में मैं रिकॉग्नाइज करने लग पाऊंगा कि मैं मेरे अंदर जो है उसके अंदर भी वही है, वही परमात्मा जो कण कण में है, जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा था, जो मैंने विद्वानों से सुना था, आज मैं उसको रियलाइज कर रहा हूं कि जो मेरे में सब में वही है, सूरज चांद में भी वही है, कीड़े मकोड़े में भी वही है, हवा और पानी में भी वही है, मेरे अंदर भी वही तत्व है। तो ये इस मंत्र का सार है कि वो अंदर है, वो बाहर है, वो मूव करता है, वो मूव नहीं करता है। वो इसीलिए जितना हम उनसे अपने आप को मेंटली दूर करते हैं, हमें वो दूर भी लगता है, बाहर भी लगता है। जितना हम उसकी रियलाइज करने लगते हैं, वो हमें अंदर भी लगता है और नियरेस्ट भी लगता है। अगले मंत्र की चर्चा नेक्स्ट टाइम करेंगे। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। ओम शांति शांति शांति।